आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में तीन राज्यों के युवा विधायकों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। पहली अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2027। पहले चरण में घरों की सूची और स्वगणना की जाएगी। और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू, अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साणंद स्थित केएनएस सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री वाव थारद में 20 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश विधानसभा में आज से तीन राज्यों के युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने हर दौर में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। आज हमारा देश विश्व की महाशक्तियों में शामिल है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से दुनिया के अनेक देश सीख ले रहे हैं।
आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायक, चुने हुए जनप्रतिनिधि और लंबी विरासत, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी, हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे।
वहीं सम्मेलन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए युवा नेतृत्व का सशक्त होना बेहद जरूरी है और इसके लिए छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले विधायकों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधायक शामिल हैं। सम्मेलन में आज पहले दिन लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में युवा विधायकों की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 169 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक सौंपने के साथ ही उद्यमियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। सम्मेलन के मुख्य सत्र में निवेश, औद्योगिक सहयोग और ओडीओपी आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित चर्चा होगी, जहां मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, अधोसंरचना और प्रोत्साहन तंत्र को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी सत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प संवर्धन और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप दिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि बायो बिटुमेन को अपनाना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, नेट जीरो लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत जैसी कई पहलों के अनुरूप है। नई दिल्ली में आयोजित बायो बिटुमेन वाया पायरोलिसिस नामक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पराली से सड़क बनाने तक का यह सफर सचमुच ऐतिहासिक है। बायो बिटुमेन एक प्रभावी समाधान बनकर उभरा है।
अब हम लोग चिंतित थे पराली का क्या करें, लेकिन अब ये जो समाधान है हमारा पराली, ये बिल्कुल वही है आम के आम और गुठलियों के। हमने दूसरी पद्धतियां भी विकसित की है कि जिनमें डायरेक्ट सीडिंग जैसी पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे बढ़ रही है। पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाएं घटी है, हरियाणा में भी कम हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कम हो रही है, लेकिन ये तो आप अद्भुत समाधान लेके आए, तो पराली के पैसे भी मिल रहे हैं। ये समाधान सचमुच में किसान की आय भी बढ़ाएगा और ये पराली से रोड बनाने तक का सफर ये सचमुच में ऐतिहासिक है, शानदार है।
इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो बिटुमेन का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनाना और स्वगणना की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि स्वगणना की सुविधा 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक संचालित की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संचालन अलग अलग 15 दिन की अवधि में होगा। उन्होंने कहा कि स्वगणना पूरी होने के बाद 30 सितंबर तक 30 दिनों की अवधि में घरों की सूची तैयार की जाएगी। श्री नारायण ने बताया कि जातिगत जनगणना जनगणना के दूसरे चरण में की जाएगी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में चलाए जा रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गांवों और नगरों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन संबंधी कार्य कुशलता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने आज भोपाल में अभियान संबंधी बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी समाज के सभी वर्गों और आमजन के सहयोग से अपने अपने क्षेत्रों में वृहद रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य कराएं और इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाएं। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथियों में संशोधन किया गया है। जारी निर्देशानुसार इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 10 अप्रैल से प्रारंभ होगा। पूर्व में इन संभागों में खरीदी कार्य 1 अप्रैल से शुरू किया जाना प्रस्तावित था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सहित पूरे देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्री श्री राजपूत ने नागरिकों से अधिक संख्या में पीएनजी कनेक्शन लेने का भी आग्रह किया, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती पूरे प्रदेश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और जियो और जीने दो का शाश्वत संदेश देने वाले भगवान महावीर का जन्मोत्सव समाज को शांति और सद्भाव की राह दिखाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और नीमच सहित कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न विकास खंडों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और बादलों का दौर जारी रहेगा। अगले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल संभाग के भिंड और दतिया जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, जबलपुर और अन्य कई जिलों में भी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में मंत्री नारायण सिंह पवार ने 1,78,00,000 से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दतिया में डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक झाबुआ जिले में 6,281 से अधिक किशोरी बालिकाओं को टीका लगाया जा चुका है। गुना में आज 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए। खंडवा जिले में 15 जुलाई तक बिना अनुमति किसी भी जल स्रोत से पेयजल और घरेलू उपयोग के अलावा पानी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। जबलपुर जिले में पिछले दिनों आगजनी की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा सतर्कता बरतते हुए नगरीय क्षेत्र में अग्निशमन उपकरणों की जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में 3 राज्यों के युवा विधायकों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। पहली अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2027। पहले चरण में घरों की सूची और स्वगणना की जाएगी और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू। अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।